ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण भावना भगवान के ही जन्म की बातें करेंगे, जिसके द्वारा हमें अपने जन्म की महत्ता का पता चलेगा। भगवान श्री कृष्ण जिनके आधार पर ही, जिनके वचनों पर ही, जिनकी सत्यता पर ही हमारा सब कुछ सिद्ध होता है, क्योंकि हम इनके अंश हैं। स्वतः अपने आप में हम निर्बल हैं, हमारे में कोई ताकत नहीं कि हम अपने आप को जाने, पहचाने, दूसरों को जाने, दूसरों को पहचाने। हर एक जीव शायद एक ही परिवार में हो, लेकिन अपनी अपनी अलग इच्छा से आता है। हमें अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म की प्राप्ति होती है, और ऋणानुबंध यानी कि एक दूसरे के ऑब्लिगेशन में फंसे रहते हैं। उसे ऋणानुबंध, ऋण यानी कुछ हमने कुछ घटा किया था, किसी का ऋण यानी कि किसी का उधार लिया था, तो यदि चुकने का या चुकवाने का जो हमें मौका मिलता है, तभी तो हम परिवार में आते हैं। ऋणानुबंध यानी कि ये बंधन है, एक दूसरे के ऋणी। यदि ऋण छोड़ के चला जाता है कोई संसार या अपने जीवन निर्वाह में भी ये सिर्फ उधारी करता रहता है, तो एक दुश्मन के अनुसार होता है, दुश्मन के अनुसार। ऋण करता पिता शत्रु, चाणक्य पंडित ने ये कहा है कि जो पिता उधार इकट्ठा करके अपने परिवार को उधारी में ही दबा जाता है, तो सारे परिवार के लिए ये पिता भी शत्रु समान बन जाता है। ऋण करता पिता शत्रु, तो ये ऋणानुबंध क्या चीज है वो समझाने के लिए हमें भगवान के जन्म और अपने जन्म में क्या अंतर है वो देखने की आवश्यकता पड़ती है। हम आज भगवान के जन्म के बारे में क्या रहस्य है वो जान रहे हैं, और अपने जन्म जो हमारे परिचय में है हम जानते हैं, क्योंकि अपने घर में बालक पैदा भी होता है तो सबको पता चलता है। छोटे बच्चे भी जान लेते हैं कि देखो छोटा बालक मेरे जैसा है। पहले नहीं था, कैसे आ गया। और जब एक ही परिवार में सब बच्चे पलते रहते हैं, लेकिन सब अपनी अपनी अलग इच्छा प्रकट करते हैं, कोई एक इच्छा वाला नहीं होता ही नहीं। तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना, हर एक खोपड़ी में अलग अलग मतियां होती हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति इच्छा वृत्ति में समान नहीं है, कार्य वृत्ति में समान नहीं है, अपने एक दूसरे के साथ के व्यवहार में भी समान नहीं है। जहां समानता नहीं है उसे भौतिक दुनिया कहते हैं या संसार की दुनिया कहते हैं। संसार की दुनिया किसी चीज में समान नहीं, हां समान नहीं है, फिर भी भगवान की ये जो माया शक्ति है, माया शक्ति सबको समान रूप से अपने तीन गुणों द्वारा खींचता है, वो व्यवस्था है, लेकिन हम लोग कोई समान नहीं। यदि समान होते भौतिक रूप से तो क्या व्यासदेव को चार वर्ण चार आश्रम की व्यवस्था करने की या समझाने की आवश्यकता थी? भगवान को स्वयं ये चार वर्ण और चार आश्रम भौतिक संसार में बनाने पड़े। आप तो कहोगे कि स्वामी जी अमेरिका में चार वर्ण चार आश्रम में तो मानते ही नहीं, क्रिश्चियन लोग नहीं मानते, हम हिंदू ही मानते, तो ये कैसे मान? नहीं, चार वर्ण और आश्रम जो गुण और कर्म के विभाग से ही बने, तो गुण कर्म तो समान होते हैं, वो माया द्वारा ये गुणों की विभाजन यानी कि उनका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन अंग्रेजी में वो करते, हर एक व्यक्ति चाहे ब्राह्मण नहीं हो तो बुद्धिमान तो होना चाहिए, और बुद्धिमान तो सब जगह होते हैं, सार सार का यानी कि सत्वगुण में रहने वाले बुद्धिमान कहलाते हैं। तो क्या सात्विकता थोड़ी सी भी कहीं भी तो मिलेगी? अमेरिका में भी मिलेगी, कोई सात्विक विचार वाले भी होते हैं, हमें अनुभव है जब पर्दे जो स्वभाव या दूसरों को मदद करने के स्वभाव उसे गुड समारिटन कहते हैं, इनका तो हमें भी अनुभव है। एक बार हम जाते थे भर विंटर में -35 डिग्री टेम्परेचर था और हम मिनियापोलिस से निकले, वो कनाडा की बॉर्डर पे आया और लंबी यात्रा थी, हम ड्राइविंग करते थे, हमारे साथ एक दूसरा भक्त भी था, तो हाईवे पर गुजर रहे थे, एकाएक टायर फटा, आसपास कुछ नहीं सिर्फ खेत ही खेत, और विंटर में खेत की हालत क्या होती है पता है? सब सूखा पड़ा होता है, कुछ उगता भी नहीं, और इतने बड़े बड़े खेत कि माइलों के माइलों आप कुछ नहीं देख पाएंगे, सिर्फ खेती के। तो हम जहां से पसार हो रहे थे जब टायर फटा तो एक बगल में थोड़ा एक खेत में एक छोटा सा घर था, बस इतने के अलावा हमें कोई किसी का भी आधार नहीं, और टायर फटा हमें तो नीचे उतरना पड़ा, हम लोग धोती में थे, बाहर -35 और धोती पहनकर, तो हम गए करीबन 1 माइल आगे, हमने सोचा कि टायर तो चूरे चूरा हो जाएगा जो फटा है, चलो वापस चलो जहां घर है, कुछ तो पता चलेगा कि क्या मदद मिल सकती है, कोई फोन बोन भी तो करना मिले, उस समय ये मोबाइल फोन नहीं आया था, ये करीबन 1984 की बात है, तो सचमुच हम धीरे धीरे गाड़ी लेकर गए हैं, तो टायर पाउडर हो गया था अंदर से, जब बिना हवा टायर खींचे जाओ तो पाउडर हो जाता है, घिसाई घिसाई से, तो यानी कि निकम्मा हो गया। तो हुआ क्या कि हम ऐसी जगह पे पहुंचे न तो कोई पहचान है न कुछ है। हमारा जो साथी था इतना घबराया था कि अभी क्या होगा, और बाहर की ठंडी में तो नहीं सुनकर अंदर ही बैठा रहा, भैया निकल तो सही ना, काफी घबरा रहा। हम गए वहां देखा तो जो किसान था वो बाहर आए। उन्होंने मुझे देखकर ही कहा, मैं जानता था तू यही आने वाला है। वो मुझे क्या कह रहा है कि मैं जानता था कि तू यही आने वाला है। मैंने कहा तेरे टायर फटे की आवाज सुनी, और क्योंकि यहां 10-15 मील में भी कुछ नहीं है तो अवश्य तू आएगा ही आएगा। इसलिए मैं अपना ट्रैक्टर निकालने की कोशिश कर रहा कि चलो मैं पहुंचू, तू आ जाए तो अच्छा। तो वो सचमुच मुझे मदद करने में आ रहा है। तो उसने अपना ट्रैक्टर निकाला, उसके पास ट्रैक्टर के अलावा कुछ नहीं है, गाड़ी तो होती है। जहां उसका घर था वहां इतनी बर्फ जमी थी, आइस हो गई थी आइस। हमने सोचा कि चलो अब ये आदमी है, कम से कम अपना स्पेयर टायर तो बदल दे। हमने जेक चढ़ाया ठंडी में, उसको मैंने उतारा, जो हमारा साथी था मुख निकल यहां से, जेक चढ़ रहा है, गाड़ी इम्बेलेंस हो जाएगी। ना उतरो, मैं जाऊं कहा? अरे मुझको बिल्कुल, कम से कम इसमें तो सहयोग दे, तू बैठा रहे और मैं जेक चढ़ाता रहा, चल निकल। नहीं मदद करनी है तो जा घर में जाकर बैठ, उसके वहां गर्म होगा। इतना गबरा कि उसकी बुद्धि भी जम गई थी, काम नहीं करती। तो हमने जेक चढ़ाया, हमें पता नहीं कि ये आइस है, जब दबाव होता है तो आइस भी पिघलता है। तो एक जेक गिर गया, और यानी कि सारी गाड़ी व्हील पे चढ़ गई। अब उतारे तो वो सज्जन, ऐसे करो मैं अपने ट्रैक्टर से ऊपर उठाता हूं। उसके ट्रैक्टर में तो वो जो फावड़ा होता है मिट्टी निकालने के लिए, तो उसे एक कोने में बना के उसने गाड़ी ऊंची कर दी। उसके चलो फटाफट कर ले, तो मैंने टायर बदल दिया। यदि वो नहीं मदद कर रहा तो हम पता नहीं कब निकलते वहां से, और वो रहने देता या कोई, सारी शंकाएं। लेकिन देखो ऐसे अभाव, यानी कि निर्जन अवस्था, एकदम निर्जन अवस्था, न तो कोई पेड़ मिले न कुछ नहीं मिले, सिर्फ खेत ही खेत, और खेत में भी मक्की कटी है, सब सूखा पड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सज्जन ऐसा निकला, वो सामने से मदद करने आ रहा। तो ऐसी जगह में भी सद्वृत्ति वाले होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तीन गुण से माया सबको ऐसे चक्कर में चलाती है, ऋण में डाल देती है। मैंने उसे कहा कि भैया मैं क्या पच्चीस करोड़ रुपए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो मना कर रहा है, साधु गरीब जैसा आदमी, अमेरिकी है, शायद मांस भी खाता हो, इसमें शंका नहीं। फिर भी कभी कभी ऐसी खोपड़ी मिल जाती है, हमारे पास पैसे भी नहीं मांग रहा कि नहीं तू जा यहां से, 10 मील पर आएगा गैस स्टेशन, वहां तू तुरंत तेरा टायर यदि बिगड़ गया तो दूसरा ले ले, नहीं तो यहां कोई व्यवस्था नहीं। हमें सलाह दे रहा, हम इनके ऋणी बन जाते। यदि ऋण नहीं चुकाते तो अवश्य हम दुश्मन की तरफ, हमें कोई ना कोई प्रकार से एक दूसरे का ऋण चुकाना पड़ता है। जब पैदा होते हैं तो आश्रित बन के आते हैं, सही, और आश्रय कोई देता है तो आश्रित आश्रय आश्रयदाता का ऋण कहना था। जो आश्रय लेता है तो वो आश्रयदाता का ऋणी बन जाता है। तो उसकी जिम्मेदारी कुछ होती है। उसी तरह देवताओं जो हमें अपने जीवन में मार्गदर्शन देते हैं हमारी सारी जरूरियात पूरी करने के लिए, वो लोग तत्पर रहते हैं। ऋषि मुनियों हमें वेद की रीतियां बताते हैं कि किस ढंग से हम अपनी इच्छा भगवान की तरफदारी से हम कर सके, पूरी कर सके। तो ऋषि मुनियों बहुत चिंतन करके बहुत सारी संहिता इत्यादि रखते हैं। तो रूल गवर्नमेंट भी हमारा पालन करती है, जो सारी व्यवस्थाएं करती जितनी करती है, लेकिन उसके ऋणी बनते हमें टैक्स तो देना पड़ता है अपनी कमाई में से, तो ऋण चुकाते हैं। इसी तरह नौकर चाकर की जो हमारी सेवा करते हैं इनके भी हम ऋणी बन जाते हैं। तो ऋणानुबंध यानी कि ऋण होते हुए बंधन, ये बंधन के पीछे हम लगाव रखते हैं। लेकिन भक्ति में ये बंधन कटते, भक्ति में ये बंधन सारे ऋण कट जाते। यदि भगवान के ऋण सीधे बन जाएंगे तो देवर्षि भूतात्म ऋणाम पितृणाम नाम किंकरोचन और पतिंच राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिवृत्त कृत्य। मुकुंद की शरण मुक्ति जो देता है वो मुकुंद भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम मुकुंद, मुकुंद माधव। तो जो भगवान का एकमात्र ऋण स्वीकारता है तो दूसरे ऋण माफ हो जाते। न तो देवताओं का यज्ञ करना पड़ता, नहीं तो गृहस्थों को ये जिम्मेदारी पड़ जाती है, चलो पंचशोणा यज्ञ करो देवताओं को खुश करने के लिए, देव यज्ञ करो ऋषि मुनियों के खुश करने के, उनके लिए यज्ञ करो। सामान्य जनता के हित के लिए आप हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल खोलो, ये रूम की व्यवस्था, धर्मशाला बनाओ साधु संतों के लिए जिसके पास कोई नहीं, सिर्फ समाज ही जिसकी जिस पर जिसका आश्रय है, तो उसके लिए ये करो, वाटर पंप लगाओ, सब रूम है। लेकिन जो साधु है, जो साधु है जब भगवान को शरणागत है उनको इन चीज नहीं करनी होती, इन लोगों को ये चीज नहीं करनी होती, क्योंकि वो सर्वात्मनाय शरणम शरण, सर्वात्मना भाव से भगवान की शरणागत हुआ है, इसीलिए गतो मुकुंदम परिहृत्य कृत्यम, ऋण का कृत्य परिहृत्य हो जाता है, ऋण करने की कोई आवश्यकता रहती नहीं। ये शास्त्र का नहीं तो अपना जन्म ऋण से ही तो मिलता है, हमारी ये इच्छा रहेगी कि कभी कभी ऐसे परिवार में पितृभक्त बन जाते हैं जो ऋण के लिए ही पितरों की सेवा करते हैं, पितृभक्त। तो भगवान कहते हैं कि तू ऋण में ही फंसा रहता है पितरों के लिए, तो जा तो पितृ के लोक में जाएगा। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि भूते ज्ञायान्ति मद्याजिनोऽभिमान, देवताओं के बचने वाले देवताओं के लोक में जाएंगे, पितरों को बचने वाले पितृलोक में जाएंगे, भूतों को बचने वाले भूतों के लोक में जाएंगे, लेकिन मुझे बचने वाले मेरे पास आए। तो ये ऋणानु बंधन सबको, सब देहधारियों को लागू होता है। वैसे तो पशुओं को भी परिवार होता है, शायद वो लोग ऋणानुबंध समझे ना, तो फिर भी जहां तक आश्रय का सवाल है, वहां माँ बाप भी, पशु माँ बाप भी अपने बच्चों पर ध्यान तो देते हैं। भगवान के बारे में ये सारा ऋणानुबंध कहता है, इसलिए भगवान की व्यवस्था जाननी चाहिए, भगवान कौन है वो भी जानना चाहिए, भगवान हमारे कैसे ऋण के बंधन काटते हैं वो भी जानना चाहिए, भगवान का जन्म और कर्म दिव्य होता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं व्यक्तियों तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति श्रुतः। ये ऋण के चक्कर में हम कहां तक फंसे रहेंगे? मनुष्य जिंदगी दी है, पर ऋणानुबंधन जब तक आवश्यकता है तब तक हो सकता है, लेकिन जब भगवान की शरणागत रहते हैं तो ऋणानुबंध बीच में क्यों खटकता है? नहीं खटकना चाहिए। भगवान के संबंध में ऋणानुबंधन आता है तो भक्ति में व्यवधान होते हैं या अंतराय पड़ जाता है, डिस्टर्बेंस आते हैं और ऑब्स्टेकल महसूस होता है। इसलिए भगवान के जन्म में क्या दिव्यता है, भगवान भक्तों के ऋणी क्यों है, भक्तों के ऋणी भगवान अपने आप को बना देते, अहम भक्त पराधीन, दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया और सुदर्शन पीछे पड़ाए, सही ना? तो सुदर्शन धारी भगवान के पास शरणागत होने जा रहे हैं, भगवान ने मना किया तो ना अपराध किया है, जिस भक्त का तो ने किया है उसकी माफी मांग, उस भक्त की माफी मांग, नहीं तो ये सुदर्शन वापस नहीं आएगा, क्योंकि मैं भक्त को पराधीन, अहम भक्त पराधीन, भक्त की भगवान ऋणी बनते हैं, भक्ति करने से भगवान ऋणी बन जाते हैं, हम घर में भक्ति नहीं करते, फिर भी ऋण महत्व का रहता है, परिवार परिवार का जो एकता रखने की जो भावना होती है ये ऋण के आधार पर, लेकिन भगवान के साथ भगवान के परिवार में वो ऋण भगवान की भक्ति में अंतराय बनता है, इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार की अवगणना की जाए, लेकिन भक्ति में तो भगवान ऋणी बनते हैं, में भगवान को नहीं बनते, हम तो भगवान की दिव्यता की बात करते हैं, भगवान की दिव्यता और इनका हमारे बीच में आना और हमारे जैसा व्यवहार करके जाना एक बड़ी ताज्जुब की बात है। आश्चर्य ऐसा है कि हमारे जैसा व्यवहार करते हैं, सिर्फ भक्तों का ही वो ऋणी रहते हैं, दूसरों का किसी का नहीं। इसलिए हम यदि भगवान को राजी करने जाए तो कितना भी धन दें उसे उसके साथ लेना नहीं है, कोई देना नहीं। कितना इनके बारे में प्रवचन करें उसके साथ भी कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। कितना सुनते रहो फिर भी उनके साथ कुछ लेना नहीं है, देना नहीं। और बताया वो तो उनको सिर्फ आत्मभक्तों के साथ ही लेना देना होता है। इसीलिए आत्मभक्तों को मिलते हैं, दूसरों को नहीं मिलते। दूसरों को मां मुश्किल से मिलते हैं, दुर्लभम दुर्लभम वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो वो गोविंद। सिर्फ भक्तों के ही ऋणी है, दूसरों के नहीं। वो भक्ति में तो प्रेम होता है, भक्ति में प्रेम होता है, भक्ति में प्रेम होता है, कोई जबरदस्ती नहीं होती। जहां जबरदस्ती नहीं वो ऋण यदि कोई स्वेच्छा लेता है, अपनी मर्जी से लेता है, तो सिर्फ भगवान होते हैं। स्वेच्छा से यदि हम जो कुछ करें, जबरदस्ती से नहीं, तो वो ऋण बंधनकारी तो नहीं, उसमें फंसते नहीं, वो हमें परेशान नहीं करता। गोपियों की भक्ति ऐसी थी, गोपियों की भक्ति ऐसी थी कि भगवान ऋणी बन जाते हैं और हमेशा के ऋणी बनना पसंद करते हैं। ऐसे नहीं कि चलो दर्शन देकर वो उनको ऋण अदा करो, भगवान उनके हृदय में से निकल ही नहीं पाते। ऐसे बंदे ऐसे ऋणी हो जाते हैं, गोपियों का प्रेम ऐसा। तो कहने का मतलब है ये कैसे हम जाने, भगवान के जन्म और कर्म में दिव्यता है, भक्ति में भगवान ऋणी बनते हैं वो भी बड़ा दिव्य होता है। इसलिए भगवान के बारे में दिव्यता की पहचान करनी चाहिए। यदि भगवान दिव्य हैं, दिव्य गुण वाले हैं, तो हम इनके अंश होते क्या हमारे में दिव्य गुण नहीं होंगे क्या? सैंपल तो है ना। दिव्य गुण यदि हमने होते हैं, क्योंकि ये अपनी विरासत है। आप तो सोने के व्यापारी थे ही, जानते हैं। तो सोने की लगड़ी जब आती थी एक अंश की, इसमें से कितनी चीजें बनती थी, छोटी छोटी कणें भी सोना ही तो कहलाती थी। तो सोने का गट्ठा और सोने का कण गुणवत्ता में तो समान होता है। तो भगवान के दिव्य गुण और भगवान का एक अंश जिसे हम आत्मा, जो हम और आप सभी है, तो क्या उनमें दिव्यता नहीं है? दिव्यता है, लेकिन हमने दबा ली है। हम कंजूस बनकर, स्वार्थ में अंधे होकर हमने माया का ऋण स्वीकारा। इनके तीन गुणों द्वारा हमारी दिव्यता छिप गई है। आत्मा पर कितने कपड़े चढ़े पता है, यानी कि उसका मूल स्वरूप छिप गया है ना। आत्मा पर मन बुद्धि और अहंकार का सूक्ष्म कपड़ा है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पांच और बड़े बड़े और कपड़े पहने हैं। पंच महाभूत का कपड़ा जिसे शरीर कहते हैं और खोपड़ी में पड़ा है मन बुद्धि और अहंकार, और उसमें भी हमारी अलग अलग इच्छा से हमने अलग अलग योनियां प्राप्त की है। तो कपड़े पर कपड़े, कितने प्रकार के कपड़े हैं, स्टाइल देखो। एक सुअर के कपड़े की स्टाइल देखो और एक मनुष्य कपड़े की, हाँ, स्टाइल ही स्टाइल मिलेगी आपको। हम तो यहाँ अलग अलग स्टाइल पहनना चाहते हैं और कपड़े पर कपड़ा, सही। तो हमारी सत्यता, हमारा जो दिव्य स्वरूप है वो छिप जाता। भगवान कहते कि आत्मा को कभी जन्म लेना ही नहीं पड़ता, वो जन्मती ही नहीं। कौन जन्मता है, कौन पैदा होता है? आत्मा पैदा नहीं होती, शरीर पैदा होता है, और वो तो जबरदस्ती से पैदा होता है। तो इसमें कितना प्रेम होगा, बहुत नहीं। फिर भी प्रभुपाद जी ने कहा कि मां बेटे का प्यार जो होता है, छोटे बच्चे जो आश्रित बनकर आया है उसका जो लगाव है, वो कम से कम भगवान के सच्चे प्रेम की एक छोटी सी झलक है। वो झलक टिकती नहीं, बच्चा जैसे बड़ा हो जाता है तो वो झलक भी ओझल हो जाती है। लेकिन नवजात शिशु के प्रति मां का जो प्रेम होता है वो भगवान के प्रेम का प्रतिबिंब है। लेकिन कलयुग में माता भी कितने निष्ठुर है, जो बच्चा पैदा होते हुए पहले मार डालती है। प्रेम की बात का, और पिता भी बेफिक्री, न तो उसे कोई ऋण का पता, न कुछ। जीव हत्या में कितना ऋण चढ़ता है पता है? यदि कोई गाय का वध करता है तो गाय के शरीर पर जितने बाल होते हैं उतनी बार उसने पशु का जन्म लेकर बारंबार उसका वध होता है, इतना ऋण चढ़ता है। कर्म के नियम में कर्म का फल उसका ऋण का प्रतिरूप। भगवान जब पैदा होते हैं या हमारी समक्ष आते हैं, जब इनका तो जन्म होता ही नहीं, फिर भी हमें समझाने आते हैं, तो वो इतना दिव्य होता है कि इनको आने की जबरदस्ती नहीं पड़ती। न तो किसी के मां के पेट में से उसे जन्म लेना पड़ता है, वो तो सब दिखावा होता है। जैसे कृष्ण भगवान आए, कृष्ण भगवान ने क्या देवकी के पेट से जन्म लिया है, बोलो? कौन कहेगा, कौन मानता है कि देवकी ने प्रसूति द्वारा कृष्ण भगवान को पैदा किया है? हाथ ऊंचा करो। कौन ये चीज नहीं मानता? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, अरे है सभी, बाकी के एब्स्टेन कोई मत नहीं दे रहे हैं। कृष्ण भगवान का जन्म होते पहले विष्णु भगवान खड़े हो जाते हैं, तुरंत प्रकट होते हैं, बच्चा तो आया ही नहीं। और देव की और वसुदेव प्रार्थना करने लगते हैं, भगवान आप आने वाले तो थे हम जानते हैं, लेकिन इस रूप में कहां बुलाया था आपको, क्यों खड़े हो गए आप, हमारे बेटे बनकर आए हैं तो ये सारा हथियार लेकर क्यों आए, आंख में शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज नारायण रूप में पहले प्रकट हो गए, दुंदुभी बजी थी, सब कुछ बजा था और नारायण प्रकट हो गए, हमने तो बेटा मांगा था ये क्यों मांगे ऐसे। उससे पहले क्या हुआ था पता है, वही जो देवकी और वसुदेव थे तो उसके अगले युग में यानी कि त्रेता युग में, त्रेता युग में इन्होंने कश्यप और अदिति बनकर वामन देव उनके बेटे के रूप में आए थे, और वो भी कितना छोटा था, करीबन सात साल का ब्रह्मचारी का रूप था उसका। अरे कोई 7 साल का ब्रह्मचारी पेट में से निकलता है क्या, वही मां बाप थे, लेकिन उस समय वो कश्यप और अदिति कहलाते थे। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो 7 साल का निकला, उसके हाथ में छतरी भी थी और कमंडलू भी था और एक मृग चर्म भी पहना था, ब्रह्मचारी बाबा। और तुरंत माँ बाप को ऑर्डर कर दिया, चलो मुझे बलि महाराज के यज्ञ में ले जाओ, बलि महाराज के यज्ञ में ले जाओ। वो वामन अवतार 3 कदम की भूमि मांगकर अपना विस्तार इतना कर दिया। अरे ये तो कई जन्म है, क्या हैप्पी बर्थडे मनाई उन लोगों ने, केक भी नहीं काटा कश्यप और अदिति को केक काटने का भी मौका नहीं मिला, ऐसा जन्म है। उससे पहले सत्ययुग में वही दोनों पति पत्नी बनकर भगवान की पुत्र की इच्छा करते हैं, उस समय वो पृष्णी और सुतपा के नाम से जाने जाते थे, और भगवान हिरण्यगर्भ बन के आ गए और तुरंत वेदों को बचाने के लिए वहां से भागे। ये बेचारे माँ बाप कैसे माँ बाप हैं, जिनको वात्सल्य भाव की जो झंझना है, प्रेम की जो झंझना है, वो करने का मौका ही नहीं देती। और इस बार वसुदेव और देवकी के रूप में भगवान चतुर्भुज नारायण रूप में खड़े हो गए। उन्होंने क्या कहा, हम जानते हैं आप भगवान हो लेकिन हमें तो बेटा चाहिए, ये रूप नहीं चाहिए था, तो आपका ओरिजिनल रूप बेटे के रूप में, क्योंकि आपकी जन्म तो दिव्य है लेकिन आपकी बाल्य लीला का दर्शन सारे जगत को हुआ नहीं। जब जब आए तब बाल्य आपकी बाल्य लीला से सारा जगत वंचित है, हमें वो वात्सल्य प्रेम निरंकुश भाव से देखना है, निरंकुश भाव से हम अपनी इच्छा को पूर्ण करें। तो विष्णु भगवान कहते हैं आप ही ऐसे एक माँ बाप हैं जो इतनी तपश्चर्या करने के बावजूद आपको वात्सल्य भाव नहीं मिल रहा है, मेरी प्रीति के लिए इतना आप सारा सेक्रीफाइस करते हैं, तो एक जरा और कर दो। यदि लीला आप नहीं देख पाओगे, दूसरे तो देख पाएंगे, ऐसी व्यवस्था कर रहा हूं। तो ऐसे करो, मैं बालक के रूप में आता हूं, तुरंत मुझे यहां से ले जाओ, गोकुल में ले जाओ, और वहां यशोदा को मेरी एक बहन जैसी मेरी छाया योग माया वहां पैदा हुई, उसके साथ मुझे एक्सचेंज कर लो, क्योंकि आप तो कारागार में हो, मैं वहां से सारा लीला का प्रचार करके मैं आपका बंधन कटवाऊंगा, तब तक राह देखनी पड़ेगी, देखो भगवान कैसे है। तो देवकी और वसुदेव इतनी सारी तीन तीन युगों से हम तपश्चर्या कर रहे हैं, तो ये छोटे छोटे साल कितने पाए, 10-15 साल में तो तू निकालेगा, हमें करेंगे, लेकिन जा हमें सारी बाल्य लीला का दर्शन कर। देवकी और वसुदेव किसी तरह विरह में, भगवान के विरह में इनकी बाल्य लीला का चिंतन कर नहीं सकते, इतना विरह है, लेकिन उनको वसुदेव और नंद महाराज दोनों मित्र थे, इन दोनों में थोड़ी चर्चा होती थी और देवकी को समाचार मिलता रहता। जब कंस वध करके देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त किया भगवान, तब वो वापस वृंदावन तो गए नहीं, गोकुल गए नहीं, यानी कि बाल्य लीला का संचार देवकी को मिला ही नहीं, पता ही नहीं पड़ा भगवान की बाल्य लीला का। इसमें ये प्रेम पाने के लिए कितनी तपश्चर्या और शुद्धि की आवश्यकता होता है, क्योंकि वो दिव्य है, वो दिव्य जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामि विश्वः। भगवान का वचन ये है कि ये मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, यानी कि भौतिक नहीं, दिव्य है, दिव्य। तो ये यथार्थ रूप में जानना चाहिए, दिव्यता के ही दृष्टि से जानना चाहिए। जब तक हम अपनी दिव्यता नहीं निकाल पाते, जब भगवान की अनुरूप दिव्यता है, तब तक भगवान के जन्म कर्म की समझ आती नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग ने हाथ ऊंचे ही नहीं किए, दे वर राइट, इसलिए हाथ नहीं ऊंचे किए, क्योंकि समझ नहीं आई। तो ये समझाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हरेक में आत्मा तो है, भगवान का अंश है, वो भी दिव्य है। जब तक हम वो दिव्यता को प्रकट नहीं करते, तब तक भगवान के जन्म कर्म और हमारे जन्म की महत्ता का परिचय नहीं होगा। सही, आप देखोगे ये जो देवकी की इच्छा अधूरी रही है, भगवान के बाल्य स्वरूप में, यानी कि उसका वात्सल्य भाव, उसके मातृत्व को जो संतोष देने वाला मातृभाव वात्सल्य भाव है, ये वात्सल्यता में भगवान को पूजना चाहती है, वात्सल्य भाव में भगवान को पूजना चाहती है। वो वात्सल्य भाव की पुष्टि होती है, वो बृहद भागवतामृत में बताया कि एक बार द्वारका की लीला में देवकी कृष्ण भगवान से पूछ रही है, ए बेटे तेरी बाल्य लीला तो सबने देखी, हम ही रह गए, जिन जिनने जन्म दिया और जिनके इच्छा पूर्ण करने के लिए तू आया, तो वही नहीं देख पाए। हम अतृप्त रहे हैं, वो कब हमें दिखाए, हमें कब दिखाए। तो भगवान कहते हैं अवश्य, ये तो मेरा ऋण है, क्योंकि आप लोगों ने मेरे लिए इतना इतनी तपस्या की है, हम आपके ऋणी हैं, हम अवश्य दिखाएं। तो बलराम को बुलाकर कहते हैं, बलराम भैया चलो यहां नया वृंदावन बसा लो, क्रिएट ए न्यू वृंदावन द्वारका। तो द्वारका में बलराम ने सारी उपस्थिति बना ली, वृंदावन जैसा वातावरण बना दिया और उसमें बहुत सारी प्रतिमाएं रखी। जब भगवान की बाल्य लीला गोकुल में और वृंदावन में हुई थी तो उसका सारा निरूपण और भगवान ने वर्णन करना शुरू कर दिया। देवकी वहां बैठी बैठी सब जो देख रही है, इतने दिव्य दर्शन देवकी को भगवान ने कराए। भगवान की बाल्य लीला का दर्शन कराया, देवकी अपने आप में बहुत संतोष पा रही है। लेकिन हुआ क्या, भगवान की पटरानी रुक्मिणी देवी वो पीछे खड़ी खड़ी होकर सुन रही है, दरवाजे के पीछे वो बाहर नहीं आ रही। भगवान की बाल्य लीला भगवान के स्वमुख से सुन रही है, तो उसके हृदय में भी वात्सल्य भाव, देखो ये तो पत्नी है फिर भी वात्सल्य भाव भगवान के प्रति पैदा होता है, कि ऐसी विलक्षण दिव्यता वाली बातें हैं। तो उन्होंने अपने हृदय में भगवान का ये बाल्य रूप और खास करके भगवान की माखन लीला जो है, तो उसमें यशोदा माता जब माखन बलोती थी तब भगवान वो ना खड़ा करके खड़े थे, उसका दर्शन उसके हृदय में चिपक गया, ऐसा चिपक गया कि उसकी भावना वही स्वरूप को पूजने के लिए तैयार हो गई। तो रुक्मिणी भगवान कृष्ण से पूछती है कि भगवान आपकी लीला तो बहुत अचिंत्य है, लेकिन जब आपने ये बाल्य लीला का वर्णन किया है मेरे हृदय में वात्सल्य भाव, वृंदावन लीला का वात्सल्य भाव, ये तो द्वारका लीला की पत्नी है, पत्नी में तो माधुर्य रस होता है, लेकिन फिर भी वो वात्सल्य भाव की झंझना कर रही है और भगवान को ही अपना बेटा समझना चाहती है। देखो क्या करामत है तो वो भगवान को पूछ रही है, क्या मैं आपकी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा नहीं कर सकती। भगवान कहते क्यों नहीं, अरे स्वयं भगवान है, लेकिन द्वारका में वो वासुदेव कृष्ण कहलाते हैं, रुक्मिणी की इच्छा जो महालक्ष्मी है उसकी इच्छा वृंदावन में प्रवेश करने की है, वहां जो प्रेम उछलता है, वृंदावन प्रेम की भूमि है, ऐश्वर्य की भूमि नहीं, द्वारका ऐश्वर्य की भूमि है, तो प्रेम की भूमि में वो जाना चाहे। तो भगवान कहते कि बना मूर्ति, तो रुक्मिणी ने भगवान की ऐसी मूर्ति तैयार करवाई जिसमें भगवान छोटे हैं, खड़े हैं माखन का बलोला, और रुक्मिणी उसकी पूजा कर रही है हर रोज, यही इसका। अरे पत्नी होते, भगवान समक्ष होते, फिर भी देखो वृंदावन की लीला में वो मशगूल होना चाहती। जब भगवान चले गए उसे पहले द्वारका को समुद्र में डुबो देना, तो ये मूर्ति इत्यादि सब कुछ अंदर चला गया। भगवान अंतर्ध्यान हो गए, अपने स्वधाम में चले गए द्वारका को डुबोते हुए। पहले स्वयं जन्म कर्म च में दिव्यम, तो इनका आना जाना और चले जाना भी दिव्य होता है। वो हमारे जैसे जबरदस्ती से आते नहीं, जबरदस्ती से हमें कर्म करना नहीं पड़ता इनको भी, और जबरदस्ती से मृत्यु भी नहीं होती। वो स्वेच्छा से आते हैं, स्वेच्छा से ऐसे लीलाएं कर जाते हैं जो कर्म नहीं कहलाती, और ऐसे चले जाते हैं न तो उनका कोई पार्थिव शरीर होता है, तो यहां छोड़ जाने की आवश्यकता होती है। तो ये दिव्यता का परिचय रुक्मिणी को कराते हैं। द्वारका में वो मूर्ति भी इसके साथ पानी में चली गई, वहां सारा गोपी चंदन ऊपर चिपक गया, काल के क्रम से वो बड़ा गट्ठा बन गया। जब गुजरात के द्वारका के व्यापारी ये डूबी हुई द्वारका में से अवशेष निकालकर अपना व्यापार करने जाते थे, या कोई अपना माल बिकने के लिए समुद्र के मार्ग से जाते, तो समुद्र में जो जहाज होता है इन लोगों का, तो उसमें लंगर लगाने के लिए किसी एक व्यापारी के पास ये गट्ठा पहुंच गया। तो वो गट्ठा लंगर, यानी कि समुद्र में जहाज को अटकाने के लिए लंगर रखते हैं, तो उसका उपयोग कर रहा था। हुआ क्या कि एक बार वो जहाज में निकला और मलबार के किनारे जा रहा था, तो दैव योग है उसका जहाज वहां खटक गया और मुश्किल में आ गया। लंगर की तो बात ही कहो, वो तो पड़ा ही रहा, लेकिन खुद जहाज स्टक हो गया। तो उस समय तत्कालीन मध्वाचार्य प्रखर आचार्य थे मलबार के किनारे, उनके आश्रम में उनको संकेत हुआ। वो हनुमान जी का भी अवतार के वायुपुत्र उनका अवतार कहलाते, तो काफी दौड़ते थे, भागते थे, छलांग भी मारते थे इतनी बड़ी। हम अभी जनवरी में ही वहीं गए थे इनकी जगह पे। वो उडुपी नाम का स्थल है जहां इनका आश्रम, तो उडुपी में एक राक्षस था, बड़ा सांप था, और पहाड़ी चट्टानों से गुजरता था, लोगों को काफी भयभीत करता था। तो एक बार उन्होंने पहाड़ से ऐसी छलांग मारी तो सांप के ऊपर ही पांव रख दिया और उसको वहीं खत्म कर दिया। लेकिन ये इतनी चट्टान में उनका पांव की छाप पड़ गई, वो भी स्थल हम देखने गए थे। तो ये मध्वाचार्य प्रखर आचार्य वायु के अवतार कहलाते हैं, वो दौड़ के वो जहाज के पास पहुंच गए और कहा कि क्या मुश्किल है, कि भैया कोई मदद तो कर, हमारा जहाज खटक गया। तो बोला हमें क्या दोगे, अरे तो जो चाहिए दे देगा, लेकिन एक बार हमें निकाल यहां से। मध्वाचार्य ने फूंक मारी, वायु पुत्र थे, जहाज निकल गया। उसको कहा चल रहा तेरे पास जो गट्ठा पड़ा है ना देते हमें, ले लो भाई, वैसे तो लंगर का ही उपयोग कर रहा हूं, मैं दूसरा ले लूंगा कहीं। मध्वाचार्य के हाथ में वो गोपी चंद्र वाला बड़ा गट्ठा आया, इतना भारी था लेकिन वो तो वायु पुत्र थे, तुरंत हनुमान की तरह पूरे और अपने आश्रम में पहुंच गए लेकर, और शिष्य को बोला चलो उसको तोड़ो। तो शिष्य ने गट्ठा तोड़ा तो अंदर से निकली वो कृष्ण भगवान की मूर्ति जो रुक्मिणी सेवा करती थी। तो मध्वाचार्य जो दिव्य पुरुष है दिव्यता से जानते हैं, तो भगवान की ऐसी भावना, तो भगवान इस तरह उसको मूर्ति के रूप में मिलते हैं और आए उनकी स्थापना की। आज भी वहां आप जाओगे उडुपी कृष्ण के नाम से ये मूर्ति पूजनी, इतने लोग श्रद्धालु लोग जो जानते हैं वो दर्शन करते हैं। जब भी दक्षिण भारत की यात्रा करो तो ऐसे भगवान की चमत्कारिक बात जो इनके जन्म के आसपास बाल्य अवस्था जो मातृ भाव और वात्सल्य भाव से उसके लिए हमें ये दिव्यता समझनी चाहिए कि हमारे यहां यदि बालक पैदा होता है उसके जन्म सालगिरह मनाते हैं तो उसमें और भगवान की लीला में कितना अंतर है। लेकिन आत्मा भगवान की जैसी न तो जन्मती है न तो मरती है, वो शरीर बदलता है ऋणानुभाव से, उसको जबरदस्ती से ऋणानुबंधन से शरीर बदलना पड़ता है, आवश्यकता है जबरदस्ती से। इसीलिए जब जब किसी की सालगिरह मनाते हैं तो इसमें ये देखना कि आत्मा को तो कभी जन्म होता नहीं, आत्मा की बर्थडे है कोई? आत्मा की बर्थडे नहीं होती, शरीर की बर्थडे होती है। लेकिन उस पर हम कितना लगाव रखें, हम भी बताया था कि शरीर तो धोखा देने वाला है, हम चाहते नहीं फिर भी वो तो छोड़ के चला जाए। तो वात्सल्य भाव क्या गलत है? वात्सल्य भाव गलत नहीं है, लेकिन वात्सल्य भाव सही है वो बताने के लिए तो भगवान ने जन्म लिया है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या कि यदि भगवान भक्त के ऋणी बनते हैं तो हम यदि भक्त बनते हैं तो हमारे यहां जो सारे परिवार में बच्चे पैदा हुए हैं उनको हम भगवान के भक्त बनाए, वो ऋण अदा करें। ये समझदारी हमारी दिव्यता की समझदारी होती है, क्योंकि आत्मा दिव्य है, शरीर दिव्य नहीं है, लेकिन भक्ति करने से ये शरीर में भी तो दिव्यता आती है। भक्ति करने से शरीर दिव्य बन जाता है, यानी कि भक्त का शरीर कोई मामूली शरीर नहीं है जो भगवान की सेवा में उपयोग हो रहा है। क्या कहा है वो गुजराती में अपने झवेरचंद मेघाणी की बात है, जननी जन तो भक्त जन, क्या दाता क्या शूर, नहीं तो रह जे वांझनी मत गुमा विष्णूर। हे माता यदि तुझे बच्चे ही पैदा करने हैं तो भक्त पैदा कर, बच्चा भक्त होना चाहिए ऐसा पैदा कर, नहीं तो कोई दानेश्वरी पैदा कर, भक्त पैदा करने की तुम्हें ताकत नहीं है, दानेश्वरी पैदा कर। दानेश्वरी यदि नहीं पैदा करना चाहिए तो कोई शूरवीर ताकतमंद पैदा कर, नहीं तो बेहतर है बिना बच्चे के। क्योंकि जो दिव्यता है नूर यानी तेज फालतू नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में सब कुत्ते बिल्ली जैसे बच्चे पे रहते हैं, न तो कोई जिम्मेदारी है न कुछ नहीं, न ऋण है न कुछ नहीं। पीपल आर आफ्टर प्रोड्यूसिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स इररिस्पॉन्सिबल लाइफ। इररिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ती जा रही है पता है? जघन्य निंदनीय। गर्भ में बच्चा बड़ा होते पहले ही उसका निकाल कर देते हैं, उसके लिए पुरुष वर्ग स्त्री वर्ग सब जिम्मेदार है और राइट एंड चॉइस की बात करते हैं, हल्ला करते हैं, क्या करते हैं, समाज में सब दिव्यता का तो कोई संचार ही नहीं। राक्षसी वृत्ति भागवत में कहा है, आज सुबह बताया था उसके अनुसार कि भक्त लोग और दुष्ट लोग अभक्त लोग ये कलियुग इतना विषम परिस्थिति पैदा कर रहा है कि खाना नहीं मिलेगा, माँ बाप को अपने बच्चे खाने पड़ेंगे और भक्त लोग घास खाएंगे। बेहतर है दूसरा कलयुग देखने के लिए आए ही क्यों? दूसरा जन्म कलयुग में हमें जबरदस्ती से लेना वो क्या अकलमंदी है? बेहतर है ऐसा उपाय करो कि इस बार भक्ति करके हम यद गत्वानुनिवर्तन्ते हो जाए, एक बार वहां जाकर वापस आने की आवश्यकता नहीं, ऐसा अकलमंदी वाला उपाय लेना है। वो भगवान का नाम गान स्मरण इत्यादि करके हम कर सकते हैं, उसकी गारंटी है। जिसके द्वारा, क्योंकि भगवान का नाम में अंतर नहीं है, दोनों दिव्य है, तो दिव्य नाम का उच्चार करने से दिव्यता का संचार होता है, हमारे आत्मा की दिव्यता जगती है। नहीं तो ये तीन गुणात्मक भाव से जो ऋणानुबंध हम बनाते रहते हैं उसमें दबे दबे ही हम अपना उद्धार नहीं कर पाएंगे। भवबंधन ऋणानुबंधन जब है तो भवबंधन कटने की तो बात ही कहां। इसीलिए सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतम कुंदम परिहृत कृत्यम। भगवान की शरणागति लेने वाले को कोई गुण नहीं रहता, कोई बंधन नहीं रहता। तो भक्ति कितना आश्वासन देती है, जो ईर्ष्यालु नहीं है वो भक्ति करेंगे। यहां कोई ईर्ष्यालु नहीं है, सब भगवान के भक्त। यदि ईर्ष्यालु होते तो आते ही क्यों? यानी कि आप सभी बहुत उत्तम विचार से आए हैं, तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी भक्ति आगे बढ़ाओ, भगवान का नाम जप शुरू करो। ये कलयुग में ही एकमात्र हमारा भवबंधन ऋणानुबंधन काटने का आश्रय है वो भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी को कोई प्रश्न है? हैप्पी बर्थडे। कहाँ खेत के उधर केक तो लाओ भाई। देव की वसुदेव को केक नहीं काट सके थे हम तो काटे, लेकिन भगवान का नाम गान करके ऐसे नहीं। हर एक वक्त अपने घर में भगवान के संबंध में ही बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। ये कोई जोकर पार्टी इत्यादि नहीं रखते।
अरे
वाह वाह, ये तो ब्रह्मचारी केक जैसा। चार साल का हो गया, किसी को कोई प्रश्न है? छोटा सा
मेरे लिए आपके से जो बहुत बड़ा, आप जिस प्रकार से ऋण के बारे में बतला रहे थे, तो गरुड़ पुराण में
ऋण के बारे में
जी हाँ तीन प्रकार के बताए गए हैं, देव, ऋषि और फिर। तो आपने ये कहा कि अगर हम जैसे माता पिता के नहीं होते ना, तो उसी में फंस कर रह गए तो मतलब एक बंधन बन जाता है ना।
अवश्य।
तो आप मुझे ये समझे कि जो माता पिता की सेवा है और ये जो ऋण है, इनमें क्या होता है? क्या
यदि भगवान को प्रसन्न करने के लिए माता पिता की सेवा की जा सके, भगवान के संबंध में हो तो ही, भगवान के संबंध में इनको भी भक्त बना दिया जाए, इनको भी भक्ति में शामिल किया जाए, तो भगवान को अर्पित करते हुए हम क्या इन लोगों को लाभ नहीं पहुंचा सकते? अलग सा ऋण नहीं है, भगवान का ऋण में सबके ऋण समा जाते हैं, अलग ऋण करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? हम लोग श्राद्ध करते हैं, ऋण चुकाने की एक बात है, लेकिन श्राद्ध तो श्रद्धा पर है। कौन सी ऐसी श्रद्धा है? श्राद्ध में तो इनके भवमुक्ति के लिए ही काम किया है, और उसमें भी हरिनाम और शरीर पिंड दान यानी कि फिर से जलाने की बात करते हैं। तो शरीर का ही एकमात्र साधन ऋण नहीं कह, शरीर का ही साधन एकमात्र ऋण नहीं है। हम लोग भक्ति करते हैं, हम लोग भक्ति करते सब ऋण चुका सकते हैं, माँ बाप को भी अंदर साथ में ले सकते हैं भक्ति, सही। लेकिन अलग से ऋण चुकाना वो भगवान मंजूर नहीं करते, क्योंकि वो सर्वप्रथम माँ बाप है। यानी कि हरेक जीव चाहे माँ बाप के रूप में आए हैं और बेटे बच्चे के रूप में आए हैं, उन लोगों आत्मा के रूप में तो भगवान के बेटे हैं सभी। तो जो अवसर प्रदान करने वाले माँ बाप हैं कि हमें यदि भक्ति में उतारे, या बच्चा ऐसा भक्त बने जो माँ बाप को उतारे, तो वहां समानता तो है ना, आत्मा की समानता है, आत्मा दिव्य होता है, और सभी भगवान के ऋणी बन जाते हैं। तो अलग से एक दूसरे पर दूसरा ऋण कौन सा होता है जो प्राइवेट कहना होता है? माँ बाप को कोई प्राइवेसी होती है, प्राइवेट ऋण होता है। जब बच्चे सभी भक्त बनते हैं, खुद भक्त होते हैं, तो प्राइवेट ऋण तो होता ही नहीं। जब भगवान की शरणागति है तो माँ बाप भी भगवान के ऋणी होते हैं, भगवान के लिए जो कुछ करो। शास्त्र अलग से नहीं, लेकिन यदि कोई धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार पुरुषार्थ धीरे धीरे सर करना चाहता है, तो वो कर्म, कर्मकांड इत्यादि में जो निपटता रहता है, उसको बंधन होता है, वो अवश्य माँ बाप के ऋणी होता है, भक्त नहीं होता। अभक्त ऋणी हो सकते हैं माँ बाप, और होना ही चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे प्रगति करते हैं। लेकिन जिस घर में माँ बाप भक्त हैं, बच्चे भक्त हैं, तो माँ बाप को प्राइवेट रूम तो होता नहीं, भगवान के चरण कमल में सब समर्पित है, तो दूसरा रूम कौन सा हो सकता है? कोई है नहीं। तो सर्वात्मना है शरण, नहीं तो ये श्रीमद् भागवत क्यों क्यों कहता है, है? देवर्षि भूतात्म नृणाम पितृणाम, पितृणों भी है, लेकिन जो भगवान की शरणागत में है, चाहे वो माँ बाप हो या बच्चे भी या सभी, तो तुमको न परिवृत्त करते हम अलग सा रूप नहीं है, कोई बाकी नहीं है। कर्मकांड, कर्मकांड सेक्शन में है, लेकिन वो जो अभक्त क्योंकि कर्म बंधन, भक्तों को कर्म बंधन तो टूटता,
जब तक ऋण है तब बंधन कैसे टूटे? इस ढंग से सब
कहां भाग गए।